Life is too short to learn from our own mistakes. We have to learn from others. That's what probably life teaches us in this journey called life. Kuch hum khud seekhte hain, kuch shayad dusron ki galtiyon se. Aur yahi cheez agar hame koi guide mil jaye, ek spiritual guide, to aap imagine nahi kar sakte ki zindagi kitni haseen ho sakti hai. Well, today we are privileged to have a special guest amongst us who is multi-talented and multifaceted personality. In fact, he is a man who needs no introduction. He's been an actor, he's been a politician, he's been a holistic healer, a spiritual guru, and he has been associated with various superstars in the past, and he had even predicted about our Sri Narendra Modi that he will be the next Prime Minister of India. We have the privilege to have him amongst us in this special exclusive interview as we share some priceless moments with him. As we have seen ki jo chal raha hai aaj duniya mein ya jo hone wala hai to kafi kuch aapne bhavishyavani pehle bhi ki thi about Prime Minister Shri Narendra Modi to kuch batana chahenge uske bare mein.
Actually नरेंद्र मोदी जी की जो पत्री है उसमें बहुत सारे अद्वितीय योग हैं. एक राजयोग होता है और एक नीच भंग राजयोग होता है. आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी की जितनी जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं उनका अद्वितीय और अद्भुत संयोग उनके जीवन के साथ रहा. जैसे वो कभी असेंबली इलेक्शन नहीं लड़े लेकिन सीधे मुख्यमंत्री बने. वो कभी एमपी नहीं बने और सीधे प्रधानमंत्री बने. जितना उनके बारे में बुराइयां की गई, जितना उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उतने ही उन्होंने उन्नति की. ये एक अद्वितीय योग है जो नीच भंग राजयोग कहा जाता है. और मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि भारत में एक तरह से नरेंद्र मोदी जी एक युग पुरुष हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुनर्स्थापना, भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना और भारतीय आर्थिक साम्राज्य की पुनर्स्थापना भी उनके जरिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए. प्रारंभिक तकलीफें तो खैर होती हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमें शरीर में कोई विकार पैदा हो जाए, ऑपरेशन कराना पड़े तो आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, फिर आपकी सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद में वो फिर हील होगा, देन फिर आप पहले से बेहतर हो जाएंगे. तो ये समाज का जो पिछले 70 साल के लगभग से जो हमारे यहाँ पे जो गड़बड़ें हो रही थी, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आतंकवाद के मामले में, नकली जो करेंसी है उसके मामले में, ये बहुत आवश्यक कदम था. और आने वाले मार्च तक लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये एक बहुत अच्छा कदम था और इससे हमारे देश का भविष्य में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा.
एंड इवन इन टर्म्स ऑफ थिएटर्स जो शायद हाउसफुल का बोर्ड नहीं लग पा रहा है, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है या मल्टीप्लेक्सेस में भी खाली खाली से पड़ा है, तो क्योंकि 500,000 नोट तो ऑब्वियसली चल नहीं रही है एंड लोग ऑनलाइन बुकिंग से भी कतरा रहे हैं, तो क्या ये दौर चले आएगा या और आने वाले दौर में अच्छी फिल्में आएंगी या नए सुपरस्टार्स उभर के आएंगे?
देखिए, मेरा एक फर्म बिलीव है, मनोरंजन मानव जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है. आर्थिक तरीके से बहुत सारे बुरे दौर में भी बहुत सी फिल्मों ने अच्छा काम किया है. अब क्योंकि एक तो फिल्में अच्छी नहीं हैं और आर्थिक समस्या तो खैर ही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब भी अच्छी फिल्म बनेगी, चाहे कितना भी संक्रमण काल हो, लोग थिएटर में जाएंगे. और मनोरंजन एक ऐसी चीज़ है कि उसको तो उधार लेके भी लोग फिल्म देखते हैं, सो वो इतनी बात नहीं है. अब क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन है जिसका असर 8 नवंबर से शुरू हो गया. जब भी कभी शनि बृहस्पति की राशि में जाता है उस समय में जितना गलत हो रहा होता है उसका सुधार होने के योग शुरू होते हैं और हर 30 बरस में ये योग आता है. इस बार जब ये योग आया तो उस समय में राहु एंड केतु भी सूर्य और शनि से प्रभावित है. राहु सूर्य के स्थान पर है और केतु शनि के स्थान पर है, ये दोनों पिता पुत्र हैं। तो सूर्य आत्मा कारक है और शनि नियत और न्याय का कारक है। तो हमारे समाज में न्याय और नियत में सुधार निश्चित है और राज आदेश आज कड़ा लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम निश्चित तौर पर अच्छा है और अच्छी फिल्में बनेंगी तो लोग आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। और आने वाले समय में बिकॉज ये ग्रह स्थिति ऐसी है कि इसके कारण से बहुत से नए लोग और बहुत से प्रतिभाशाली लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे और उनको उनके संघर्ष का और उनके टैलेंट का निश्चित तौर पर उनको सुपरिणाम मिलेगा।
आपने शायद 2014 में ही प्रेडिक्शन की थी श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इंडिया के, तो कुछ इसके बारे में बताना चाहिए।
मैंने मार्च 2013 में ही ट्वीट कर दिया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं। एंड सितंबर में उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। एंड 2014 में जब इलेक्शन का दौर चल रहा था उस समय में मैंने सोशल मीडिया पे भी एंड दिल्ली में कुछ लीडिंग पेपर्स में भी ये आया था कि बीजेपी 272 प्लस है एंड एनडीए 330 प्लस है, जो उस समय में कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरा एक आर्गुमेंट दूसरा ये था कि मोदी जी को जो उन्होंने शपथ ग्रहण की वो उन्होंने तुला लग्न में शपथ ग्रहण की और तुला को हम चर लग्न कहते हैं। मेरा उस वक्त बड़ा प्रयास था कि वृश्चिक लग्न जो स्थिर लग्न होता है उसमें शपथ ग्रहण करें। बहुत कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया और उन्होंने 6:11 और कुछ सेकंड पे उन्होंने शपथ शुरू की। उस कारण से इतने अच्छे काम करने के बावजूद कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी विपक्ष के माध्यम से दूसरे माध्यम से होती रहती है। अगर 6:18 के बाद शपथ होती तो उनको यश और ये जो कटु भाषा जो प्रयोग कर रहे हैं, जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में किसी भी विपक्ष ने नहीं की, वो शायद नहीं होती। लेकिन मोदी जी की कुंडली में एक विचित्र योग ये भी है कि जितनी उनकी बुराई की जाएगी वो उतने ही सशक्त बने।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ जानने को मिला और दुनिया को एक अलग नज़रिए से शायद हम देखने की कोशिश करेंगे अभी। एंड लेट्स होप दैट वी हैव अ बेटर इंडिया इन फ्यूचर।
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दिस वॉज द ग्रेट श्री भरत उपमन्यु विद अस इन अ स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।